扫檀स्याद्वादनये षट्द्रव्यगण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। बोली द्वादशांग मई जिन वाणी मात नो जय हो।
सिद्धानं नमो वायरीयानं नमो वज्जायानं नमो लोये सव्यसाहुरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वद जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छदे वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचल्मणो वम गदिं पत्ते वोचामि समय पाहु मेणमो सुदकेवलीवन।
इकतीस गाठा का पाठ करते हैं। जो इंद्रिय जड़ता बोलो आप सब लोग जो इंद्रिय जड़ता राड सहावादियम मुण दियादम तम खलुजि दंदियम ते भड़न्ति जेड़े चिदासाहु कर इंद्रिज ज्ञान सुभावेरु अधिक जाने आत्मे को निश्चय विशेषित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्न द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है उसे जो निश्चय नये में स्थित साधु वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। ये आज गुरुदेव ने बताई कि एक नंबर की स्थिति है और जो 32 गाथा है वो दो नंबर की स्थिति है ना। एक नंबर की यानी पहले होने वाली स्थिति, सबसे पहला पराक्रम पुरुषार्थ अभिप्राय में परिवर्तन आता है। इंद्रियां नहीं छूटती, इंद्रियों के विषय नहीं छूटते, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं छूटती, पर इंद्रिय मैं नहीं हूं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, ये महाभ्रांति टूट जाती। जीव बाहर से ऐसे लगता है कि जैसे क्या परिवर्तन आया, परंतु हृदय परिवर्तन बहुत बड़ी बात। अब उसे अपना घर देख गया, अब जितना स्थिर होगा उतनी शांति बढ़ती जाए, पर जिसे अपना पता ही नहीं कि मैं कौन, तो क्या प्रयास करता है। जैसे करुणा की मूर्ति पूज्य गुरुदेव सिंह ने अभी कितने रहस्य खोले। आखिरी में जाते जाते एक 32 गाथा में एक बात कही कि मूल कर्म के फल देने की, मूल कर्म है इसमें फल देने की सामर्थ्य, ऐसे जीव को जो राग देश होते, राग की रुचि तो छूट गई, अभी जो राग होगा वो किस कारण से होगा, सलभ मूल कर्म के फल से। तो गुरुदेव कहते एक द्रव दूसरे द्रव का तो कुछ करता, उसका फल कैसे आ गया हम में, तो क्या होगा फिर कि ये जीव स्वयं में स्थिर नहीं रह पाता तो वो मूल कर्म का उदय और फल कहलाता। अब ये स्वतंत्रता निकालना कितना कठिन था, क्योंकि आगम पढ़ रहे थे हम और आगम में ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि ये कर्म के उदय से ऐसा होता है, इस कर्म के उदय से ये होता है। हमने तो सीधा पकड़ा गया कि इस कर्म के उदय से ज्ञानावणी के उदय से ज्ञान रुकता है, चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होता है, दर्शन मोहिनी के उदय से मिथ्यात होता है। और स्वामी जी ने क्या पढ़ाया डॉक्टर साहब कि जब तू अतत्व रुचि रखता है, अपने स्वभाव की रुचि नहीं करता, उसका नाम दर्शन मोहिनी का होता। कुछ अंदर आए स्वामी जी के आने पर, अपन ने शास्त्र तो वही पढ़ा था जो लिखा था कि दर्शन मोहिनी के उदय से मिथ्यात होता है, तो अपन ने किसे कोष न दोष देना चालू कर दिया, कर्म के उदय। अपन फालतू बैठे रहे, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, जब ये कर्म का उदय टलेगा तो हमारा मिथ्या टल जाए। और करणानुयोग ये कहता है कि करणानुयोग के अनुसार तेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, ये तो जानकारी का विषय है। धर्म कांटा है कि 8 कर्म होते हैं, यहाँ जीव के परिणाम होते हैं, इन निमित्तों से ऐसे कर्म आते हैं, इनके उदय में ऐसे जीव के भाव दिखाई देते हैं, पर कर्ता कर्म नहीं था। पर अपन ने क्या लगा रखा था, निमित्त निमित्त को एक तरफ रख के उससे कर्ता कर्म संबंध स्थापित किया। तो गुरुदेव श्री आए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी भ्रांति, इसने तो जिन शास्त्र में पढ़ करके स्वाध्याय करके इसमें से पराधीनता निकाल ली। अभी जो जिन शासन हमें स्वाधीनता के लिए मिला है उसको पढ़कर पराधीनता निकालेगी तो कहां इलाज होगा इसका। युगल जी बाबू थे तो उन्होंने चैतन्य की चहल पहल नाम का लेख लिखा, तो वो उन्होंने लिखा कि गुरुदेव के दिगंबर जैन धर्म में आने के पूर्व आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था परंतु माना अशुद्ध ही जाता। नयों की भाषा के दासत्व के कारण इसे शुद्ध कहना पड़ता था, क्योंकि लिखा है शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध, तो पढ़ना तो पड़ेगा। लिखा है इसमें शुद्ध नय से शुद्ध, पर इसका अर्थ ही नहीं निकालना आता था। शुद्ध नय से शुद्ध का अर्थ क्या होता, कि शुद्ध है उसे जो ज्ञान देखे उसे शुद्ध नय कहते। अब लिखा कैसा मिलेगा, शुद्ध नय से शुद्ध, और है क्या, शुद्ध है तो उसे ज्ञान शुद्ध जान सकता, इतना कौन सोचता। वो तो क्रांतिकारी जीव थे, विदेश क्षेत्र से आए थे, संस्कार लेके आए थे, देशना ताजी ताजी थी, भले वो खोटे मत में जन्मे पर वज्र पुरुषार्थ करके उन्होंने शांति खोज ली। और उसके बेस में ही मिलता है कि उन्हें गहरी रुचि थी, हमें तो शांति चाहिए, आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कहना ये है कि अपन को भी ऐसी धुन होना चाहिए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए। डॉक्टर साहब भली होना रे किसकी, जिसे भाव आने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो चरित्र बन रहा है ये कैसे बन रहा, ये जो मेरे परिणाम हो रहे इसका कौन फल भोगेगा, क्या आएगा रिजल्ट, अभी तो अंधेरे में अपन को तो विचार भी नहीं आता। और इन सब का समाधान सरस्वती जनवाणी में क्या लिखा है, इसके लिए जो जनवाणी सुनता है उसे प्राथमिक श्रोता कहते हैं, भव्य जीव के किसे भली होना रहे जिसकी उसी विचार आते। तो बाबू जी ने लिखा कि गुरुदेव के पहले आने के पहले आत्मा को शुद्ध कहा जाता था, माना अशुद्ध जाता था। क्यों? क्योंकि यदि अभी से शुद्ध मानेगी तो फिर सिद्ध होने होंगे कैसे अपन? अभी तो अपन को शुद्ध होना, सिद्ध भगवान शुद्ध है, अरहंत देव शुद्ध है, अपन तो अभी अशुद्ध हैं और हमें शुद्ध होना। अब गुरुदेव ने क्या पढ़ना बताया कि तू शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये अपन कहां रुके थे? द्रव्य को छोड़ बैठे। अपन जो बोलते थे वो बहुत सर्वथा गलत नहीं था, पर अपन कहां खड़े थे? पर्याय और किसे देखते थे? कारण निमित्त। अज्ञानी गुरुजनों ने क्या बताया कि तेरी परिणति में भले अशुद्धता हो परंतु तेरा द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध ही है। तो अब भजन की बात है। एक ने कहा आत्मा शुद्ध है और दूसरे ने कहा आत्मा अशुद्ध, ऐसा लिखा मिलेगा। अब इसमें से अर्थ निकालना। गुरुदेव ने सिखाया कि तू शुद्ध ही है ऐसा नहीं देखना, ये पर्याय अशुद्ध। कितना अंतर आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध। और स्वामी जी ने क्या पढ़ा कि द्रव्य ही शुद्ध है, द्रव्य ही अनादि अनंत, वो शुद्ध ही है और प्रति समय की होने वाली पर्याय उसे शुद्ध नहीं देखती, ये उसकी अशुद्धि है। द्रव्य की अशुद्धता नहीं है, ये किसकी अशुद्धि है? पर्याय की। क्या अशुद्धि है डॉक्टर साहब उसकी? वो शुद्ध नहीं देखती है अशुद्धि। हम क्या पढ़े बैठे थे कि हम अशुद्ध है, संसारी है, हमें शुद्ध होना। और गुरुदेव जी ने क्या कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि तू अशुद्ध नहीं है, तू शुद्ध ही है, तुझे शुद्ध नहीं होना है, तुझे शुद्ध देखना है तो पर्याय को शुद्ध होना। अब भजन की बात। तो ये दोनों लाइन मिली लिखी, एक ने कहता शुद्ध है, एक ने कहता है अशुद्ध। गुरुदेव ने कहा कि शुद्धता है और पर्याय में ही अशुद्धि। तो अब अपन ने कहा भले द्रव्य शुद्ध हो, सुनना जरा, स्वामी जी से सामना किया लोग, भले द्रव्य शुद्ध हो पर पर्याय तो अशुद्ध है ना, ऐसा बोले अपन कुतर कर रहे ज्ञानी के। अब स्वामी जी ने क्या कहा, भले पर्याय अशुद्ध हो पर द्रव्य तो शुद्ध है। बाबू जी कुछ अंतर है, लाइन तो एक सी पर बोलने में भजन किस पर? इतने में मिथ्या तो सम्यक चल रहा। ऐसा नहीं है कि कोई जीव यहाँ जीव नहीं है, उसका आत्मा शुद्ध नहीं है, परंतु भजन काय पे, अरे भले शुद्ध है परंतु अपनी दशा तो देखो। और स्वामी जी क्या कहते थे, भले तेरी दशा ऐसी है, भूल तो जा तू एक मिनट, द्रव्य तो देख कैसा। कितना अंतर आ गया। यानी ऐसा लगता है कभी कभी कि यदि गुरुदेव नहीं आते तो महावीर चले गए, समझ कुंद कुंद देव का शासन चला जाता, अंधेरा हो जाता इस भरत क्षेत्र। क्योंकि ये बात है जिसमें से निकाले कैसे, पढ़ तो अपन लेते थे पर पढ़ने में से कैसा मर्म निकालना, भजन कहाँ देना, इसके लिए प्रोफेसर की जरूरत होती है। नहीं तो सीरीज खरीद के परीक्षा दे सकते थे, 50 रुपए की ले लो, काय को 50,000 दे, पर पुस्तक लेके पढ़ाई कर लो, पर उसके हार्द नहीं समझ में आए। वो तो गुरुजन होते हैं और उसका रहस खोलते हैं, और गुरुजन ये कहते हैं कि तू मेरे भरोसे नहीं रहना, तेरा जो समझ का काम है वो तेरे उपादान से होगा, मेरी कृपा से नहीं समझ में आएगा, तुझे अपने आत्मबल से समझ में आएगा। गुरु उसे कहते हैं जो हमारी गुरुता बताते। किसे कहते गुरु? जो हमारी गुरुता बताते। हमारे भगवान प्रभु हैं। प्रभु किसे कहते हैं? जो हमारी प्रभुता बताते। हमें पामर बताए और हमें दास बनाए, हमारा जैन दर्शन ऐसा नहीं। अपना भगवान का मार्ग ये है, दर्शन ये है कि हमारे बराबर आके बैठो, क्योंकि हमारे समान तुम्हारा स्वभाव, संसार में भटकते हुए अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा था, तो रविंद्र जी का नाम सुना, उनसे पूछा कि पंडित साहब ये भगवान के पास ऐसे खड़े रहते हैं तो ये भगवान हमारी तरफ देखते क्यों? हाँ, बोले एक भगवान दूसरे भगवान को हाथ जोड़े नहीं देख सकता। वो कह रहे तुम भी अपने को भगवान देखो जैसे हम अपने को भगवान देखते। तो इतनी बात से अपन को समझ में आया कि गुरुजनों का मिलना क्या कहलाता है और भजन कैसे देना चाहिए। बाबू जी ने कहा कि बात तो तू सही कहता है कि पर्याय शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, पर तेरा भजन जाता पर्याय पर। ऐसा कहता है कि भले शुद्ध है पर अभी दशा तो खराब। अब आचार्य जन ये कहते कि भले पर्याय अशुद्ध है पर तेरा तो मूल द्रव्य तो शुद्ध ही है, और शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध नहीं माना तो अशुद्ध को दूर करने की कोई विधि भगवान ने नहीं दी। अभी अपन को 31 नंबर की गाथा में अमृत चंद्र देव के वचन पढ़ना है, इसमें दो लाइने फिर अपन स्वामी जी का पढ़। इसमें लिखा है टीका में कि तीन प्रकार की इंद्रियां होती बाबू जी, कौन कौन सी? द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ। ऐसी कभी चर्चा अपन ने सुनी नहीं कि इन इंद्रियों को इंद्रिय मानते थे। कितनी इंद्रियां होती हैं? पांच होती है, अपनी पढ़ाई हुई थी, ये तो स्कूली पढ़ाई है, ये तो मिथ्यात की पढ़ाई, जगत की पढ़ाई, वही जनों की पढ़ाई। वो कह रहे ये पांच इंद्रियां जिसमें गर्भित है ऐसा एक शरीर ही इंद्रिय, इसको कहते द्रव्य इंद्रिय। इस पूरे शरीर को क्या नाम दिया उन्होंने? द्रव्य इंद्रिय। और इस इंद्रियों के दरवाजे से अपना जो उपयोग है, प्रगट पूंजी है, ज्ञान है, छिपसम ज्ञान है, प्रगट ज्ञान है, जानने देखने का व्यवसाय है, वो आप इस ज्ञान से क्या करते हो कि हम इस तरफ मुख करके देखते हैं। ऐसा पांच इंद्रिय के विषयों को, शास्त्र को, प्रतिमा को, जगत को, पिक्चरों को, टीवी को देखते हैं। वो कह रहे हैं जो भी देखते हो उस ज्ञान में ज्ञायक दिखाने की सामर्थ्य अब नहीं रही। किस ज्ञान में? जो ज्ञान इस तरफ हो गया। फिर से ज्ञान तो अपना है और ज्ञान तो ज्ञायक की प्रसिद्धि करा रहा था, ज्ञान ज्ञायक से आ रहा था, क्योंकि बिना ज्ञायक के कभी ज्ञान होता ही नहीं। जगत में एक ही जगह ज्ञान होता, उसका नाम है ज्ञायक भगवान। परंतु हमें जो प्रगट ज्ञान प्रति समय होता था, हम उस ज्ञान से क्या करते थे कि हम पांच इंद्रिय के विषयों को जानते थे। तो अब उस ज्ञान का नाम क्या पड़ गया यहाँ? भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्यों पड़ा? है तो जीव की पर्याय इसलिए भाव, परंतु इंद्रियों के साथ में लगा इसलिए इंद्रिय। इसका नाम क्या है? भाव इंद्रिय। किसका नाम? आपने ही प्रगट ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? जो ज्ञान इंद्रियों के दरवाजे से ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है, जानकारी लेके आता है। अरे वो शास्त्र की भी जानकारी लेके आए तो उसे भाव इंद्रिय कहेंगे। दो ज्ञान हो गए डॉक्टर साहब, पहला वो दो इंद्रियां, एक तो द्रव इंद्रियां पूरे शरीर जिसमें आंख नाक कान ये सब बने हैं पांच इंद्रिय, और दूसरी इंद्रिय है भाव इंद्रिय। क्योंकि इनके माध्यम से जब भी आप जानने का प्रयास करेंगे तो फिर सिर्फ पुद्गल की अवस्थाएं दिखेंगी, इनमें कभी ज्ञायक नहीं दिख सकता। इस तरफ देखने से ज्ञायक है यहाँ और हम देख रहे हैं यहाँ, इसको भी देखेंगे, अरे जिनवाणी भी सुनेंगे तब भी ये इंद्रिय निमित्त बनेगी, उसे सुनने वाले ज्ञान में ज्ञायक नहीं दिखेगा, इसलिए उसका भी लक्ष्य छोड़ाया और छोड़ देता है जीव जिसे आत्मा चाहिए। तो दो इंद्रियां हो गई, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय किसे कहा इसमें परिभाषा अपन पढ़ेंगे, और ये छह संज्ञान भाव इंद्रिय। तो तीन प्रकार की इंद्रियां, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जो अनुभव करता है ऐसा मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अब देखो द्रव्य इंद्रियों के बारे में इस मूल ग्रंथ में लिखा, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वस्त जिसमें समस्त सुपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एक में हो रही है, भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, ये हुआ द्रव्य इंद्रियों को जीतना। लंबी परिभाषा है पर अपन उसे सोच विचार करेंगे छोटा छोटा। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय की बस। अनादि अमर्याद यानी इसकी कोई मर्यादा नहीं, ये कब से देह के साथ, द्रव्य इंद्रियों के साथ, भाव इंद्रियों के साथ ये पाए जाते, ये जीव कब से हो इस अनादि से, और शरीर कब से, और कर्म कब से उदय में आ रहे। तो ये पेड़ कितने इंद्रिय बहु जी, पेड़ देखा ना वनस्पति, ये कितने इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय। हाथी कितने इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। ये पढ़ाई अपन ने अनादि से पढ़ी, और हाथी पंचेंद्रिय जीव है ऐसा जो अपन को दिखा, तो ये जनवाणी ऐसा पढ़ाएगी कि हाथी का शरीर अजीव है और हाथी की आत्मा जीव, दो हैं तुम्हें एक क्यों दिखाई देता। अनादि अमर्याद है, ये जीव के साथ देह क्या मिल गई, और इसकी सोच भी मिली मिली चल रही, क्योंकि कल्पना भी नहीं कर सकता कि आंख नहीं होगी तो हम कैसे देखें। जिसने ये माना कि आंख नहीं होगी तो हम कैसे देखेंगे, वो कभी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अनंत भगवान सिद्ध भगवान आंख से देखते हैं कि केवल ज्ञान से देखते हैं। और इस जीव ने तो ये दिमाग में बैठा लिया कि आंख रहेगी तो हमें दिखाई देगा, कान रहेगी तो हमें सुनाई देगा। सुलभ बताओगे, बताओ ये केला है, है ना, वो किस रंग का होता है, हरे रंग का कि पीले रंग का, कच्चा होता तो हरे रंग का होता, और पक जाता तो पीले रंग का। अब जनवाणी ये कह रही है और घर के लोग कह रहे हैं कि छिलका हरा पीला होता है और दल सफेद होता है। दल केला का नाम है, छिलके का नाम नहीं। वो छिलका साथ में रहता है तो दिमाग में अपने वो बैठ गया कि ये भी केला। अभी कौन सोचे कभी, प्रयोग दिन भर करते हो कि उसे छिलके को अलग करते हो, दल का सेवन करते हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तो प्रॉपर है पर मिथ्या सही नहीं, उल्टा सीधा पढ़ाता। वो ये जीव को देह को मिला के बताता है। जी बताओगे, निब्बू किस रंग के होता है, पीला होता है और हरा नहीं होता, हरा भी होता, हरा भी होता और पीला होता। अच्छा बताओ, नींबू का स्वाद खट्टा बताए ना, तो खट्टा नींबू है कि हरा पीला नींबू, खट्टा है। और अपन ने किसे नींबू मान, मनुष्य कितने इंद्रजीव होते। ये थोड़ी सी कोशिश कराएंगे, प्रयोग कराने, कि आपको दिन भर बैठे बैठे जो प्राप्त ज्ञान है इसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो ये पर्याय तो छूट जाएगी। पर अपनी आदत है सुनने की तो पड़ गई, कम से कम गुरुदेव के आने से इतने लोग बैठने लगे, नहीं तो सास सभाओं में बैठते नहीं थे लोग, पहले बहुत दुर्लभ था ये जनवाणी के कान में पढ़ना दुर्लभ। अभी तो इतना उन्होंने माल भी दिया, मार्केट भी दिया, विधि भी पढ़ाई सिखाई, कैसे पढ़ो इसमें तुम्हारी कथा लिखी, तुम भगवान हो तुम अपने को भूल गए हो, तुम चैतन्य हो तुम्हें खबर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति माँ बाप समाप्त शांत हो जाए और वो गरीबी में गुजर रहा हो तो अपने को क्या मानेगा कि हम गरीब, ये मानेगा तब वो गरीब है कि आत्मा, अब तो सोच ही बना ली उसने मैं तो गरीब। अब यदि उसके पास बहुत पैसा हो जाए तो अपने को करोड़पति मानने लगे, पर वो करोड़पति है कि आत्मा, बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस जीव को अनादि अमर्याद लिखा बाबू जी, जब से यह जीव है तब से इसके साथ कर्म का उदय और कर्म के उदय की प्रोडक्ट दो, काया और कसाय, दो चीजें मिलती इसके गिफ्ट में, अपराध के फल में। संयोग में शरीर रहता है और अंदर में कसाय चलती। अब भीतर जो भगवान है, ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी है, चैतन्य स्वरूपी है, अरूपी है, अमूर्ति के अनंत गुणों का धारी है, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, ये तो दिखाई देता नहीं। क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है जो बता रहे, अनादि अमर्याद रूप से बंद पर्याय के वश हो गया। बंद पर्याय के वश यानी जैसा कर्म का उदय में प्राप्त होता है शरीर, और जो परिणाम उसको ही अपना मानता है, उसके बस में हो गया, उसने बस में किया। गुरुदेव कहते ऐसा नहीं हुआ, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी यदि काही। कर्म को तो ज्ञान नहीं, वो कैसे आपको सुखी दुखी करे। संयोग सामग्री मिला अपन को, जो पैसा मिलता डॉक्टर साहब आप बता, ये कौन से कर्म के उदय में मिलता बता। अपन पढ़ रहे हैं ना दो द्रव्यों की स्वतंत्रता समझ, मतलब ये पैसा जो मिलता है, ये शरीर मिलता है, तो शरीर किस कर्म के उदय में मिलता, नाम कर्म के, और पैसा किस कर्म के उदय में, पुण्य कर्म से ही ना साता भेद, ये कह रहे ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है, साता वेदनी कर्म का उदय वहां आता है और यहाँ जड़ का परिणमन यहाँ होता है, और कहा जाता है इसके उदय से और होता है स्वतंत्र परिणमन। पढ़ने में भी अपन को कितना सावधानी चाहिए, किसी को किसी में मिलाकर कथन करने वाला व्यवहार न, और वैसे ही मान लेना मिथ्यात है, और उसका प्रयोजन समझना ही विवेक है चतुराई। ये उन्होंने क्यों कहा ऐसा, एक कोई प्रयोजन हो, क्योंकि उस समय उन्हें बंद का ज्ञान कराना था और उदय का, इसलिए वो तो कहेंगे कि इस कर्म के उदय में ऐसा हुआ। बताओ माता जी, नींद किस कर्म के उदय में आती, नींद आती है ना पर मंदिर में ज्यादा आता, तो नींद किस कर्म के उदय में आती है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय। वे कह रहे अरुचि से नींद आती है तब दर्शनावर्णी कर्म को, दर्शनावर्णी कर्म को नहीं मालूम कि हम तुम्हें नींद मंदिर ही मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ आराम मिलता है, इसलिए यहाँ शांति से सो लेते हैं अपन, घर में अच्छे से जागते। आज तक कोई महिला भोजन बनाते समय नहीं सुनी सोई, और कोई सेठ नोट गिनते समय नहीं सोया, कभी नहीं सोया, और कोई व्यक्ति भोजन करते समय नहीं सोया, और मंदिर में सब लोग सोते, सब लोग यानी किसी किसी को अच्छे से आराम मिलते, क्यों भाई कह रहे हमारे हाथ बंद पर्याय है भाई साहब। ये सोचो ये जीव को ये जेल बिल्कुल सुबह नहीं देता, ये शरीर कहां से मिल गया, ये अपराध का फल। तो अब अपराध है तो जेल मिला, तो जेल और कैदी एक में खो जाएंगे, जेल जेल रहेगा, कैदी कैदी रहेगा। अनादि अमर्याद रूप यानी इसकी मर्यादा नहीं समझ में आती कब तक चलेगा, बंद पर्याय की बस, बंद पर्याय यानी कर्म के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद होते ना, इनके उदय आते, इनकी बस यानी बस में हुआ यानी इनके उदय में ये जुड़ता है, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया। अब देखो अभी किसी से भी क्या, हमसे भी कोई पूछे कब आए जबलपुर से, तो सीधा ही निकलता इतने बजे आए ऐसी तारीख से, ऐसा नहीं लगता कि हम आने जा रहे हैं कि हम ज्ञाता दृष्टा, ऐसा ऐसा रोम रोम में मिथ्यात का कोल भरा। अब उनको ऐसा लगता है कि सुन लिया कितना सुंदर प्रवचन है, परंतु उसकी प्रयोग पद्धति यदि नहीं अपनाएंगे तो वो हिलता भी नहीं मिलता। ये तो सुनना शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा परिणाम वो पुरुषार्थ करेगा वैसा आएगा, जो सुनकर संतुष्ट है वे व्यवहार आभासी, ऐसा लगा तोड़ मिल जाए। तो यह क्या हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया यानी विवेक के दिन चले गए इसके। कैसा हो गया, अरे भैया जैसे ये कपड़ा पूछ रहे आपसे है ना, बता ना कौन बताएगा, बाबू जी आप बताओ ये कपड़ा किस रंग का है, ये जो कलर है ना किस रंग का, गुलाबी रंग, लाल रंग, जो भी रंग है ना कपड़ा। अभी जनवाणी मालूम क्या कहते, कपड़ा तो सफेद है और रंग रंग, ये लोग कह रहे तेरे विवेक की सूरज अस्त हो गया, देखना नहीं आता, कहते कहते नहीं आता। अब कितने उदाहरण दोगे आप कि आपको ऐसा लगने लगेगा अब तो हमें समझ में आएगा, और फिर एक मिनट बाद फिर वहां से उत्तर दे बता ना, और पास में आओ। जैसे ये युगल जी के परिवार से बहुत अच्छा उनके नाते, तो ये जैसे दूध में अपन ने शक्कर डाल तो दूध कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, और ये कहते नहीं हो कि दूध मीठा क्यों नहीं होगा, क्योंकि शक्कर अपना स्वभाव छोड़ने तैयार नहीं। तो मीठा है दूध में जो मीठा लगता है वो कौन लगता है? शक्कर लगती। और दूध दूध रहता है और शक्कर मीठी रहती। परंतु अपने इंद्रिय ज्ञान से जब भी अपन देखते हैं तो दूध मीठा लगता है। आप देख लेना कभी भी किसी से भी पूछोगे कि शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होगा। दाल में अपन नमक डालते तो दाल कैसी हो जाती? खारी हो जाती। तो खारा नमक है कि दाल खारी? ये पढ़ना पड़ेगा बहुत गहराई से। गहराई से पढ़ना है नहीं, ये पुस्तक वाला पढ़ना नहीं, अपने ज्ञान को बार बार वस्तु स्वरूप से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे अपन? ये जो अभी समझ में आ रहा है, इतना समय सार का गुरुदेव ने अभी प्रवचन सुना है, अपन सबको समझ में आ रहा, प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में कहां से आ रहा है? अपने ज्ञान से आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और लगता कहां से? देखो आपने आधी बात तो सही कही, बिल्कुल सही कही, क्योंकि अभी यही चर्चा चल रही कि दूध मीठा नहीं होता। तो इन्हें कहा कि अपने ज्ञान से कह दो नहीं तो फंस जाए। तो इन्हें बोला तो यही है कि अपने ज्ञान से यार, पर मानते नहीं। मानते तो ऐसे कि मंदिर जाओ तो शांति मिलती है, पुस्तक पढ़ो तो ज्ञान होता है, और नहीं तो आप बताना अच्छे स्कूल में अपन अपने बच्चे को क्यों भेजते? अपनी लड़की को अच्छे घर में क्यों भेजते? जहाँ खूब पैसा हो, जहाँ सुंदर लड़का हो, जहाँ योग्य हो, ऐसे सब गुण देखते हैं। तो अपनी लड़की को, मेहनत सुंदरी को तो कोड़ी को दे दी, उन्होंने तो नहीं देखा। पर अपन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज, भाई सब क्यों भेज? बिल्कुल ईमानदारी से बता ना, मंदिर में बैठ कि अपने बच्चे को अपन चाहे लाखों रुपया खर्च हो जाए, जरा सा है वो, उसकी अकल ज्यादा काम नहीं करते, परंतु अपन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में क्यों भेजते हैं? अच्छा ज्ञान आने के लिए। तो ज्ञान स्कूल से आता है कि भीतर से आता है? रोम रोम में भरा है अच्छे स्कूल से अच्छा ज्ञान। और ये जिनवाणी ये बता रही है अच्छे बच्चे को अच्छा ज्ञान। कुछ अंतर है ना बाबू जी? अपन ने माना कि निमित्त से उपादान में काम, और ये सिखा रही कि उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त मिलते। हमने कोशिश तो जरूर की कि हम वहां बच्चे को भेजें, पर ज्ञान मूर्ख चंद को आएगा कि समझदार को आएगा? समझ चाहिए ना। तोता को पढ़ाया जा सकता बाबू जी, और कौए को पढ़ावा क्यों? आप तो पढ़ा सकते हैं ना, जब तोता को राम राम पढ़ा सकते तो कौआ को भी पढ़ा, बगला को भी पढ़ा, तो बगला को क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो अपन को अभी जिनवाणी पढ़ा रही है, इसलिए ज्ञान हो रहा है कि भीतर से ज्ञान हो रहा? अब भीतर से लगने लगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, और अपन को अभी सम्यक दर्शन जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी घूमना है बम्बई। इतनी जल्दी जगह क्या करें? कैसी मानसिकता है ये? भगवान कह रहे कोई अपन को, भगवान तू ज्ञान स्वभावी भगवान है, और अपन को ये अच्छा नहीं लग रहा, अपन को वो अच्छा लग रहा, खाओ पियो मस्त रहो, इसके अलावा और कौन सा सुख होता है? अभी ये कह रहे कल्पना में भी तो लाओ, कौतूहल भी जगाओ, तो तुम भाग्यशाली। इस काल के जीवों को सुनने मिल रहा है ये बहुत बड़ा भाग, ये चक्रवर्ती के पुण्य से ज्यादा पुण्य है अपना, जिसके कारण अपने कान में सरस्वती जा रही। अभी डॉक्टर साहब ने देवलाली में विधान कराया और यही बात सुनना चाहते सब जी, ऐसी सुनाओ ऐसी बात है, गुरुदेव से मिल गई है, यही दोहराते रहते, इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं। परंतु ये कह रहे हैं कि तुम्हें निर्णय तो लेना पड़ेगा कि तुम्हें समझ में आता है, वो आता कहां से? आता तो है समझ में, ऐसा तो नहीं जब अपन भूख विषय यानी पांच इंद्रिय के विषय सेवन करते, खीर खाते समय, तो वो खीर खाते समय बाबू जी अच्छी लगती कि खराब लगती है? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बता, अच्छी लगती कि खराब लगती? सीरा खाते तो अच्छा लगता है कि खराब लगता? अच्छा लगता है। तो अब वो कह रहे हैं अच्छा लगना हमें इसका निश्चित नहीं है, पर अच्छा कहां से लगता है इसमें हमें थोड़ी सोचना, कि सीरे में अच्छे लगने के गुण हैं कि अच्छा लगना ज्ञान की जाति? यदि ज्ञान नहीं हो फिर अच्छा लगा के बताओ। कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसमें से खून नहीं आता, और खून कहां से आता है बाबू? अपने हड्डी से आता है, और लगता क्या है उसे? हड्डी में से आता है, इसलिए वो हड्डी नहीं छोड़ेगा कभी। उसे सपने में भी हड्डी दिखती कि डली मिल गई है, पहाड़ जैसा ढेर और अपन चूसरे में जा रहा, और उसे सोचना नहीं बन रहा कि इसमें है नहीं तो आएगा कहां। अभी अपन को सुनाई दे रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा है कि नहीं, आपको सुनाई दे रहा है, काय से सुनाई दे रहा है? कैसे कह रहे हैं कि ज्ञान से, और ये कह रहे हैं कि ज्ञान ना हो पर कान को सुनवा के बताओ। यदि कोई व्यक्ति यहाँ सो गया हो, उसके कान है कि नहीं यहाँ है, तो उसे ज्ञान क्यों नहीं? कान तो है उसके बाबूजी, और ज्ञान होने पर भी उसे कान होने से सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जानने वाला तो ज्ञान है, वो कोई दूसरा काम में लगा इस समय। इसलिए स्वामी जी ऐसा पढ़ाते थे कि गे से ज्ञान मानता है, विषयों से सुख मानता है, और परिग्रह से प्रभुता मानता है। तीन बातें दोहरा ना, गे से ज्ञान मानता है, बोलो गे से। दिन भर की कसरत है, सब तरफ जैसे ज्ञान को चाकर बना दिया इसने, गे के सन्मुख करता है दिन भर, क्योंकि उसे लगता है कि ये खोला तब ये समझ में आए। ऐसा नहीं लगता कि आज समझने की पर्याय प्रकट का काल था और ये निमित्त बनना था, ऐसा तो सोचने बंद हो गया। गे से ज्ञान मानता है, कहां से मानता है ज्ञान? गे से ज्ञान मानता है। और सुख कहां से मानता है? विषयों से सुख मानता है। विषयों में सुख है कि आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा सुख स्वभावी, तो सुख कहां से आना चाहिए? विषयों से कि आत्मा से? आत्मा। तो जब विषय सेवन करने का उपाय करता है तो दुखी होता है कि सुखी होता है? होता दुखी है, कैसे पता चलता है? थक के छोड़ देता है, थोड़ी देर विकल्प की पूर्ति होती तो उतने देर तक बैठा रहता, कुछ मन का हुआ, बाद में कहता है हमें टीवी बंद तो करो, हमें अच्छा ही लगे, नींद आ रही, थक गई, आंखों में दर्द होने लगा, ये क्यों कहता है जब उसमें सुख है? विषयों में सुख है नहीं, विषयों में सुख माना, और परिग्रह से प्रभुता मानता। प्रभुत्व शक्ति किसकी है? आत्मा की। और मानी कहां से? जड़ में से। बहुत बड़ा रोग है। अब ये से ज्ञान माना तो पूरा जीवन लौकिक पढ़ाई में डाल देता, 2500 वर्ष से पढ़ाई करेगा, अब कभी इसे केवल ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान नहीं होगा, मन पर ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान, क्योंकि अपना ज्ञान गे से जोड़ा तो वहां से सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अपने शास्त्र पढ़कर सम्यक ज्ञान क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें ये लिखा है कि ज्ञान तेरा स्वभाव है, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, ये इसमें लिखा है, इसलिए इसे पढ़ते पढ़ते तो आत्मा की याद आ जाएगी, पर जगत के अखबार पढ़ करके, टीवी इंडिया टुडे और आज तक पढ़कर सुन करके उससे ज्ञान नहीं आएगा। डॉक्टर साहब क्यों नहीं आएगा उससे ज्ञान? बाबू जी आप बता ना, इंद्रियों से ज्ञान क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल एक न्याय बताती जनवाणी, इसमें 490 से आखिरी की गाथे 390 से, रे शास्त्र नहीं ज्ञान क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, रे वर्ण है नहीं ज्ञान क्योंकि वर्ण कुछ, रे शब्द है नहीं ज्ञान क्योंकि शब्द कुछ। ये क्यों लिखा? इतने बड़े संत और ये छोटी छोटी सी बातें लिखती, हम इतना नहीं जानते क्या? इंद्रियों में ज्ञान नहीं, अरे जानते तो बहुत ज्यादा हो आप, पर मानते कहां हो? कहते भरो कि आंख से ज्ञान नहीं होता और कान से नहीं होता, पर आंख में जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो अपन को ऐसा लगता है भगवान के दर्शन कैसे हो। तो आज तक भगवान के दर्शन इससे करे थे, करना काय से थे? विवेक से आंख से दर्शन, विवेक से करो दर्शन कि ये जो भगवान दिख रहे हैं इसके भीतर कोई परमात्मा आनंद की मूर्ति विराजमान, अनंत चतुष्टय का धनी, अतिंद्रिय आनंद भोग रहे हैं, सुख का फब्बारा फूट पड़ा है, उसका नाम अनंत भगवान। सुख का नाम लेते भगवान याद आए तो समझ लेना तुम भगवान की भगत, और सुख का नाम लेते ही संयोग याद आए, सुविधाएं याद आए, समझ लेना तुम्हें आत्मा नहीं चाहिए, संसार चाहिए। पहला प्रश्न है, इंद्रियों से ज्ञान क्यों नहीं होता? बहन जी आप बताओ। क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, फिर से इंद्रियों से ज्ञान क्यों नहीं, क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं। प्रकाश से ज्ञान क्यों नहीं, क्योंकि प्रकाश में ज्ञान नहीं। राग से ज्ञान क्यों नहीं, क्योंकि राग में ज्ञान नहीं। विषयों से सुख क्यों नहीं, क्योंकि उसमें विषयों में सुख नहीं। धरती से पानी क्यों आता है, क्योंकि धरती के नीचे पानी है। शक्कर से मिठास क्यों आती है, क्योंकि शक्कर में मिठास है। आत्मा से केवल ज्ञान क्यों आता है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान का धनी। सुख आत्मा से क्यों आता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप। ये पढ़ाई पढ़ना, अभी पढ़ने के लिए कितना बड़ा मैटर दिया है, समय बहुत जल्दी हो गया। इसमें लिखा है कि ये भाई इस शरीर को प्राप्त है द्रव्य इंद्रिया। ये पांचों इंद्रिया किसे मिली है, शरीर को। और अपन को लगता है कि हमें मिली, सोच ही बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि अपन इस समय मनुष्य की पर्याय में है, अपन को आंख नाक कान मिले हैं, भगवान की कृपा से मिले हैं और बड़ा पुण्य का उदय है। इनसे पूछो कि ये शरीर मिला है और उसमें इंद्रियां मिली हैं, उस शरीर को मिली हैं, तुम्हें नहीं मिली हैं। तुम्हें तो ज्ञान दर्शन स्वभाव मिला है, जिसकी तुम्हें बेइज्जती करते, उसका तो आदर आता नहीं है। और जो तुम्हें मिला नहीं है उसका आदर आता नहीं। भगवान मिले अपन को पुण्य की उदय, तो लाभ तो लेते नहीं। हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, तो हमारा मंदिर कहने से क्या हो जाए। भगवान को देख तो वो क्या कह रहे, काय के लिए बैठा ले। इतना बड़ा आयोजन था बाबू जी, भारी आयोजन, पूरा भारत उमड़ के आया। तो बताओ कितना बड़ा उद्देश्य होगा, सारे जगत के जीव आत्मा को जान, मंदिर को जान, प्रतिमा को जान, कार्यक्रम को जान, ये उद्देश्य होगा। अरे आत्मा भूल गए उसे जाने, क्योंकि ये आत्मा देख रहे हैं तो ये आत्मा देखने में निमित्त बन जाए। इस तरह से उन्होंने एक तो ये लिखा कि शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्यंद्रियां, दूसरा ये लिखा जैसे सुनने से नहीं मिलेगी, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से जब तुम सर्वथा इन इंद्रियों को भिन्न जानोगे कि स्वप्न में भी इंद्रियां ज्ञान में कारण नहीं होती, तब तुम्हें ज्ञायक भगवान का दर्शन। जब तक तुम ये कहोगे कि हम इनकी कृपा से जी रहे, आंख ना होती तो भगवान कैसे दिखते, तब तक तुम आत्मा का घोर अपमान कराने। अरे आंख तो निमित्त होती है जब तुम देखते हो तब। बस एक मिनट का उदाहरण देके समाप्त करते। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा बाबू जी, और वो ठंड लग रही, बुखार आ गया। तो उसने कहा कि भाई साहब खिड़की बंद करो, मुझे बहुत ठंडी हवा लग रही, फीवर। एक को बहुत गर्मी लग रही, उसने कहा कि हम खिड़की खोले। वो कहे कि हमें ठंड लग रही है, और ये कह रहा था हमें गर्मी लग रही। दोनों लड़ रहे थे खिड़की खोलने के लिए और खिड़की बंद करने के लिए। और बाद में एक साधर्मी आए कि भाई साहब काय के लिए लड़ रहा, कि ये कहता है कि हम खिड़की खोलेंगे और ये कहता है हम खिड़की बंद करें। तो वो बोले इसमें कांचे ही नहीं है, तुम कर क्या रहे। ऐसे ही इनमें, इन गड्ढों में अकल ही नहीं है कि तुम्हें ज्ञान करा दे, तुम कर क्या रहे हो। इनकी एकत्व में अपना जीवन बर्बाद कर रहे, बंद बनता है गलत सोच।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहज शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। आश्चर्य सिद्ध समय प्राप्त मार्ग पर 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। विजय क्षेत्र में विद्यमान श्रीमंद राधि अजित परंत विश्वरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अद्य दिन मंदिर में जयमन पर विराजमान श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान नो जय। अम आंगणे पधारे विराजमान पंच मेरु नंदी सदीप न समस्त शाश्वत जिनेन्द्र भगवान नो जय। दिव्य धनी न सारभूत नित्य बोधक परमागम समय साधि समस्त जिनवाणी मात नो जय। पर क्षेत्र न भव्य भक्तों ने जिनवाणी मातना भेटना करावनार भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देवनो जय हो। हम भक्तों पर निरंतर करुणा ध्वज वसावनार अनंत आनंद उपकारी श्री कहान गुरु देवनो जय हो। कहान गुरु महिमा प्रकाशक प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। अमूल्य तत्व न विचारक आत्म सिद्धि न प्रदाता परम कृपाओ देवनो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टनिका पर्वनो जय हो। श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे जो तेरा शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूं तो। बोलो जिनवाणी मातनो जय हो।